ओम शांति। बाप दादा के विशेष रतन राजयोगी आतम भाई जी उपस्थित हैं, सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भाई जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का आपका विषय है साधन एवं साधना का बैलेंस। राजयोगी आदरणीय आतम भाई जी।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में साधन और साधना का बैलेंस रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जितना हम बैलेंस रखते हैं उतना बाप की तथा परिवार की हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जितनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं, हमारा जीवन खुशनुमा अनुभव करते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में साधन और साधना का बैलेंस रखने की कला को सीखना बहुत जरूरी है। वास्तव में हमें साधन मिलते हैं साधना को बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन जैसे कि परछाई के समान होते हैं। जब हम साधनों के पीछे भागते हैं तो साधन हमारे से और दूर भागते हैं, और जब हम साधन की ओर पीठ करते हैं तो साधन हमारे पीछे भागते हैं। इसलिए साधनों के पीछे हमें नहीं भागना है। साधन हमारे साधना का आधार ना हो, साधनों का अभाव तथा प्रभाव हमारे पुरुषार्थ में शिथिलता न लाएं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो हमें साधन दिए हैं, जैसे कि वाहन हैं, कंप्यूटर हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल्स आदि आदि साधन हमें दिए हैं, इन साधनों का प्रयोग हमें जरूर करना है, लेकिन प्रयोग करते करते उनके प्रभाव में हमें नहीं आना है, उनके लगाव में हमें नहीं रहना है। न्यारा और प्यारा होकर हमें साधनों का प्रयोग करना है और साधना को आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि साधन हमारे पुरुषार्थ का या साधना का फल होता है, हमारे भाग्य का फल होता है। इसलिए हम सन्यासी नहीं हैं जो साधनों का त्याग करें, लेकिन जितने भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए हैं वो सभी हमारे लिए किए हैं, क्योंकि इस बेहद के ड्रामा में हम सभी आत्माएं हीरो पार्टधारी हैं। इसलिए हमारे सेवार्थ उन्होंने इनों का आविष्कार किया है। पिछले मुरली में भी बाबा बार बार वैज्ञानिकों को याद करते रहे और थैंक्स देते रहे। तो साधना में चार बातें होती हैं, साध्य, साधक, साधना और साधन। साध्य बाबा हैं, साधक मैं आत्मा हूं और साधना अर्थात मैं और बाबा के बीच में जो कड़ी है उस कड़ी को जोड़ने के प्रयास को साधना कहते हैं। और जितना हम साधना करते हैं अपने मन को बाबा जो साध्य हैं उनों पर टिकाते हैं और साधना को प्रखर करते हैं, उतना साधनों की उपलब्धि हमारे जीवन में होने लगती हैं। इसलिए साधना का भी बहुत महत्व हमारे ब्राह्मण जीवन में है। साधना के बारे में पांच बातें समझना बहुत जरूरी है। उसमें पहली बात है, साधना ब्राह्मण जीवन की नींव है। हम बाबा के पास आए हैं अपने ही कैरेक्टर की 21 मंजिल की बिल्डिंग सुंदर बनाने के लिए आए हैं और उस कैरेक्टर की बिल्डिंग का फाउंडेशन अर्थात नींव है साधना। तो जितना इस नींव को हम पक्का करते हैं उतना हमारे कैरेक्टर की बिल्डिंग बहुत मजबूत और बहुत सुंदर बनती जाती हैं। और जो साधक इस नींव को पक्का नहीं करते हैं, साधना पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए कहते हैं सुनंती, कथंती और सुनावंती और भागंती। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन की जो नींव है साधना की, उसको हमें बहुत पक्का जरूर करना है। बाबा ने सेवा का खिलौना हमें खेलने के लिए अवश्य दिया है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह उस सेवा के खिलौने से खेलने में ही मस्त नहीं रहना है, लेकिन सेवा करते हुए हमें साधना को भी निखारते जाना है। क्योंकि सेवा से जो हमें दुआएं मिलती हैं उन दुआओं के आधार से हमारी साधना और तीव्र होती जाती हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में हमें ध्यान देना है इस नींव को, साधना के नींव को बहुत पक्का करना है। दूसरी बात है, साधना ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर एक व्यक्ति चाहता है अपना श्रृंगार करना, सभा में अपने को सुशोभित दिखाने का, शोभनिक दिखाने का प्रयास हर संभव करता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में जितना हम साधना करते हैं उतना आत्मा का आभा मंडल प्रखर होता है और चेहरे पर विशेष दिव्यता की चमक भी दिखाई देती हैं और दिव्य गुणों के आभूषणों से आत्मा को सजाने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। दिव्य गुणों का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उन दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है साधना का बल प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान से तो हमें युक्तियां मिलती हैं, लेकिन युक्तियों को धारण करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो साधना का अर्थ है आत्मा पर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको उतारना और आत्मा को दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाते रहना। इसलिए साधना ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाता है, व्यक्तित्व को निखारता रहता है। तीसरी बात है साधना और सादगी, इन दो बातों का डोली चोली और दामन जैसा जोड़ है। जैसे चोली और दामन अलग नहीं होते हैं, वैसे साधना और सादगी भी अलग नहीं हो सकती हैं। जितना हम अपने जीवन में सादगी अपनाते हैं, अपने ब्राह्मण जीवन में साधना का स्तर ऊंचा अनुभव करने लगते हैं। हमने देखा है महात्मा गांधी जी कितने सादगी में रहते थे और कितनी साधना उन्होंने की, और उस साधना के आधार से बहुत महान कार्य करने में भी वो सफल रहे। प्यारे ब्रह्मा बाबा का जीवन भी सादगी संपन्न था और उसके कारण उन्होंने उच्च कोटि की तप साधना भी अपने जीवन में की और अपने जीवन को निखारा, और उसके आधार से हम देख रहे हैं बिल्कुल सादगी वाले जीवन चलाते हुए भी आज कितने वो महान बन गए, सारा संसार उन्हों को नमस्कार कर रहा है। तो इसलिए अपने जीवन में सादगी को अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोट पैंट पहनना ही रॉयल्टी लोग समझते हैं दुनिया वाले, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सिंपल रहना, सैंपल बनकर रहना, यही ब्राह्मण जीवन की सादगी है और श्रृंगार है। चौथी बात है साधना का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति अनुभव करना। अगर हम सचमुच आध्यात्म आकाश में बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं, बहुत सुंदर साधना में गहन अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की वृत्ति को जीवन में अनुभव करना। क्योंकि जितना इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होता है, उतना हमारा परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता है। इसलिए हमें कोई शरीर छोड़ता है उस समय क्षणिक वैराग्य जरूर अनुभव होता है, लेकिन कड़ी तप साधना के लिए सदाकालीन वैराग्य वृत्ति अनुभव होना बहुत जरूरी है। हम सदैव समझें ब्राह्मण जीवन मेरा मरजीवा जन्म है, मैं पुरानी दुनिया से मर चुका हूं और नई अलौकिक दुनिया में नया जीवन जी रहा हूं, अलौकिक जीवन जी रहा हूं। ऐसी अंतर आत्मा से आवाज आए कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैं इस मुझ आत्मा ने इस रंगमंच पर बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, अभी समय है रिटर्न जर्नी करने का, परमधाम रूपी घर वापस जाने का। तो मुझे घर वापस जाना है, यह बात अगर हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती है तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हमें अनुभव होने लगता है। तो सदाकालीन वैराग अनुभव करना बहुत जरूरी है। पांचवी बात है, साधना ही प्रभु की सच्ची आराधना है। साधना करना अर्थात मन को प्रभु में लगाना, मन को प्रभु में लगाना ये सबसे बड़ी कला है। इस संसार में जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं से ये सबसे बड़ी कला है, मन को प्रभु में लगाना। क्यों सबसे बड़ी कला है? क्योंकि मन को ही सब कुछ लोग जानते हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ऐसे बड़ी शक्ति को, मन को अपने कंट्रोल में रखना और सर्वशक्तिवान परमात्मा पर टिकाना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को अपने पास हमें अनुभव करते जाना है, इसलिए आवश्यकता है कड़ी तप साधना करने की। तो जब हमारी बुद्धि समर्पण होती है, समर्पण भाव बुद्धि में पनपने लगता है, तो स्वतः ही मन मनमना भाव का अजापा जाप मंत्र करने लगता है, जपने लगता है। लेकिन हम देखते हैं गृहस्थ में रहते रहते हमारा ध्यान गृहस्थ में थोड़ा सा फंस जाता है। गृहस्थ की रीत रस्म हमें जरूर निभानी है, लेकिन सच्ची प्रीत बाबा के साथ रखते हुए निभानी है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, लौकिक में रहते हुए अलौकिकता की शक्ति को बढ़ाते रहना, दिव्यता की शक्ति को बढ़ाते रहना। लेकिन साधना से प्रभु की सच्ची आराधना करने के लिए मन में प्रभु के प्रति बहुत जिगरी प्यार होना जरूरी है, उनके प्रति जिगरी लगाव होना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं दुनिया में आईएएस की परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी होते हैं, उन्हों को पढ़ाई के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है। या अच्छा क्रिकेटर जो होता है, उस क्रिकेटर को बॉल और बैट के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे सच्चे साधक बनने के लिए हमें बाबा ही बाबा नजर आए, ऐसी साधना हमारी हो। बैठक का योग अगर हम करते हैं तो निराकारी बाप को ही हम देखते रहें, और कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में अपने सामने रखें। एक आंख में शिव बाबा, दूसरी आंख में ब्रह्मा बाबा, या एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा, ऐसे हमें अनुभव करते जाना है तो स्वतः ही बाबा हमें नजर आते रहेंगे। तो साधना हमें जरूर करना है, लेकिन वर्तमान समय की आवश्यकता है। वर्तमान समय बाबा का इशारा है, केवल साधारण साधना हमें नहीं करनी है, लेकिन कड़ी तप साधना करनी है, घोर साधना करनी है, क्योंकि पुराने जन्मों के जो हमारे कठोर संस्कार हैं उनको हमें परिवर्तन करना है। और दूसरी बात, शक्तियों के खजाने का स्टॉक बढ़ाना है। ये बात तभी संभव हो सकती है जब हम शक्तिशाली साधना को बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए आवश्यकता है बाप से हमारा अटूट प्यार हो। जब बाबा से अटूट प्यार होता है तो हमारी बुद्धि के तार बाबा से ही जुटी रहती हैं, लेकिन हमारा प्यार इधर उधर थोड़ा बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? जो बाबा से हमें प्राप्तियां हो चुकी हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, उन प्राप्तियों की विस्मृति होती है, इसलिए बाबा से प्यार हमारा कम होने लगता है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी फकीर हैं, किराए का मकान लेकर बैठे हैं, हमारे पास केवल थोड़ी सी पूंजी सच्चे दिल के प्यार की बची हुई है। तो ऐसे प्यार की पूंजी को, अमूल्य पूंजी को सुदामा की तरह हमें बाप के हवाले करना है, बाप के साथ उसका सच्चा सौदा करना है और वफादार बनकर उस वायदे को निभाते भी रहना है। तो स्वतः ही बाबा से हमारा अटूट प्यार बढ़ता जाएगा और हम प्यार के सागर में लीन होने की अवस्था को भी अच्छी तरह से अनुभव करते जाएंगे। क्योंकि जब तक हम प्यार के सागर में लीन नहीं होते हैं, तब तक शक्तिशाली स्थिति अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्यार के सागर में जब हम खो जाते हैं, समा जाते हैं, शिव मैं हो जाते हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो जो प्रेम स्वरूप याद हमारी होती है, उस शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है और शक्तियों का आभास या अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। कड़ी तप साधना करना अर्थात ज्ञान सूर्य की तपत में तपते रहना, सूरजमुखी बनकर परमधाम रूपी पीस पैलेस में ज्ञान सूर्य बाबा को हम देखते रहें और पूरी एकाग्रता के साथ जब देखते हैं तो आत्मा में अथाह शक्तियां ग्रहण करने लगते हैं, अपने में भरने लगते हैं, जिसके कारण ज्वाला स्वरूप साधना की या शक्तिशाली साधना की अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ हमें बैठना है। सच्चे साधक के जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और एकाग्रता, इन गुणों की आवश्यकता होती है। साधना के स्तर को हमेशा आगे बढ़ाते रहने के लिए इसलिए हमें ध्यान देना है। दिन प्रतिदिन एकाग्रता की शक्ति भी हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हम साधारण साधना तो करते ही हैं, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए बाबा के पास हम आए हैं, तो साधारण योगाभ्यास से थोड़ी शक्तियां हमें मिलती जरूर हैं, लेकिन सारे दिन भर में वो शक्तियां यूज भी करते हैं, तो शक्तियों का बैलेंस ना होने के कारण आत्मा को बैटरी को चार्ज करने की जो स्पीड है वो फास्ट नहीं होती हैं। इसलिए आत्मा की बैटरी को चार्ज तेजी से करने के लिए बाबा से अथाह शक्तियां आत्मा में भरते रहने की आवश्यकता है। उसके लिए कड़ी तप साधना करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए परम धाम में बाबा के पास हम बैठे रहें, वहां से कोई मायावी या दुनियावी शक्ति हटाना चाहे तो भी वहां से नहीं हटें। आसमान में जो तारे होते हैं उसमें ध्रुव के तारे का विशेष गायन होता है, उसके बारे में क्या बताते हैं, ध्रुव जो बाढ़ है उसने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति की, भगवान विष्णु जब उसको प्रसन्न हुए तो विष्णु जी ने कहा तुम्हें क्या वर मैं दूं, क्या वरदान दूं? उसने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एक स्थान दीजिए जहां से तीनों लोगों से कोई भी मायावी शक्ति मुझे नहीं हटाए। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो वो ध्रुव का तारा एक ही जगह बहुत चमकता है, वो कोई जड़ सितारे का गायन नहीं है, हम बाबा के चैतन्य ध्रुव के सितारे का वो गायन है। तो हमें बाबा के पास अपनी जगह फिक्स करनी है, क्योंकि जो बहुत सुंदर होता है, जो सुखदायी होता है, उनके साथ रहने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और आनंद के साथ में शक्तियां भी हमें मिलती हैं। इसलिए उनके साथ में बैठने का आनंद लेते रहें। वास्तव में हमारे जीवन के गोल्डन मोमेंट्स वो हैं जब हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के सानिध्य में, परमधाम में, स्वयं को अस्तित्व में, उनके अस्तित्व में अनुभव करते हैं, वो हमारे जीवन के सुनहरे पल हैं, वो सफल पल हैं। तो ऐसे सुनहरे पल को हमें बढ़ाते रहना है और बहुत अच्छी तरह से साधना में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें देह से बहुत प्यार होता है, देह से थोड़ा सा हम न्यारे होते हैं, बाबा के पास बैठ जाते हैं तो वह देह का भान हमें पुनः इधर खींचता है, बहुत मैग्नेटिक पुल, बहुत ममता का जो पुल है देह के साथ हमारा होता है। इसलिए बाबा के पास लंबा समय तक अगर बैठना चाहते हैं तो एक ही साधना हमें करनी है, अपने देह से न्यारा रहने की, क्योंकि देह के भान को तोड़ना ये सबसे बड़ी मंजिल है। तो जितना जितना देह के भान को हम तोड़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, उतना उतना बाबा के सानिध्य का लाभ हमें मिलता है। पांडवों के लिए भी गाया गया है, पांडव जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके साथ जो पूंछ हिलाने वाला कुत्ता था वो भी कहां गायब हो गया, जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ते गए वो गलते गए, बाद में वो पांडव भी पता नहीं कहां गायब हो गए। ये अभी का हमारा गायन है, पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि बाबा के जो बच्चे हैं वो पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं अर्थात ऊंची साधना करते हैं, तो आत्मा की जो पूंछ है देह रूपी उस पूंछ को भी भूल जाते हैं, वो पूंछ भी गायब हो जाती है, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, साधना को और बढ़ाते हैं, तो तो आत्मा में जो देह का भान है वो भी गल जाता है, बाद में हम परम धाम में चले जाते हैं, बाबा के पास बैठ जाते हैं, तो दुनिया वालों ने कहा ये पांडव गायब हो गए हैं। तो ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति शास्त्रों में गाई है, उस स्थिति की अनुभूति हमें वर्तमान समय करते जाना है। तो बहुत हम सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं, मधुबन ये सारे विश्व के ग्लोब में सबसे पुण्य का धाम है, सबसे श्रेष्ठ धाम है। इस भूमि पर आना और योग साधना करने का चांस मिलना ये बहुत बड़े पुण्य की निशानी है। इसलिए इस धरनी पर आप सभी पहुंचे हुए हैं, इसलिए साधना में बहुत सुंदर अनुभव हमें करते जाना है। बाबा का इशारा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना है, क्योंकि बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, ज्ञान के सागर बाप ने, उसकी ब्यूटी है ऐसे गहन और श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव करना। तो अलौकिक अनुभव की पूंजी हमें अपने जीवन में बढ़ाते जाना है, क्योंकि अलौकिक अनुभव की पूंजी जिनके पास होती है उनको विशेष तीन लाभ होते हैं। जिनों के पास कठिन साधना के द्वारा बहुत अलौकिक अनुभव जमा होते हैं, वो आगे आने वाले हलचल के समय भी अपनी स्थिति को अचल रखने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, ऐसे हलचल के समय भी अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करने की क्षमता उनके पास होगी। और तीसरा लाभ, ऐसी महान अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी, क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उनकी शक्तियां भी गुप्त हैं, अदृश्य हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसी होती है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसी सुंदर रचना को देखकर सारे विश्व की आत्माओं का ध्यान बाबा के तरफ जाएगा, और बाबा की प्रत्यक्षता ऐसी महान विभूतियों के द्वारा इस संसार में होगी। इसलिए हमें अपने ब्राह्मण जीवन में यही तात सदा लगी रखना है कि अपने जीवन में कड़ी तप साधना करके बहुत सुंदर और बहुत गहन अलौकिक अनुभव मुझे बढ़ाते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे अनुभवी हम बनते जाते हैं, वैसे वैसे अनेक आत्माओं के दुआओं के पात्र भी बनते जाते हैं। जब हम अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को ऐसे अलौकिक अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है, साहस मिलता है, और जब वो आगे बढ़ते हैं उनके दिल की दुआएं भी हमें मिलती हैं। इसलिए एक कंडीशन है, इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी अलौकिक अनुभव तब हो सकता है, अनुभव, जब तक स्वयं को अणु अर्थात बिंदु अर्थात सूक्ष्म आत्मा नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें यही साधना करना है, मैं इस स्थूल देह से न्यारी बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूँ, आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, इसी साधना में हमें सदा लगे रहना है, खोए रहना है। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी स्तुति, ये दुनिया का नियम है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, ये दुनिया का नियम है। तो बाबा के पास आने के बाद मुझे ऐसी कड़ी तप साधना करनी है और स्थिति अपनी बहुत अचल अडोल बनानी ही है, चाहे उसके लिए कितना भी प्रयास मुझे क्यों न करना पड़े करके ही रहूंगा, लेकिन मुझे मेरी स्थिति साधना के द्वारा बहुत अच्छी अडोल अटल बनाते ही रहना है, ये लक्ष्य हमारा हो। और बाबा जो हमारा साध्य है, उस साध्य पर हमेशा हमारा बुद्धि रूपी नेत्र एकाग्र हो, क्योंकि जितना जितना बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा बसे रहते हैं तो ये स्थूल नेत्र भी जादू का काम करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है अंतिम समय प्रत्यक्ष था कि बहुत धूम मचेगी, तो जिनों के बुद्धि रूपी नेत्र में शिव बाबा होंगे उन्हों के स्थूल नेत्रों के द्वारा भी बहुत साक्षात्कार बाबा कराएंगे, तो वो समय आने के पहले हमें बहुत अच्छी तरह से साधना करना है और ऐसी जादुई स्थिति बनाना है। क्योंकि कहते हैं जब हमारे बुद्धि में एक बाबा होता है दूजा कोई नहीं होता है तभी हमारी बुद्धि और मन जादू का काम करती है, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव हमारे द्वारा भी लोगों को होते रहेंगे। हम देखते हैं हमारी दादी जानकी जी सारे जीवन उन्होंने तपस्या की साधना की और अपने स्थिति को निखारा, तो आज देखो उनके पल भर की दृष्टि लेने के लिए भी कितने प्यासी आत्माएं होती हैं। अभी हम सभी चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योग साधना का अनुभव करने जा रहे हैं, तो सभी एकदम हल्के फुल्के होकर बैठेंगे, कोई भी बीच में नहीं उठेंगे और बहुत तल्लीन होकर बहुत सुंदर योग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ज्योति सागर शिव पिता की, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा संतान हूं। महान भाग्यशाली आत्मा हो, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा देह रूपी दीपक से न्यारी होकर ज्योति धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। अहो मैं आत्म ज्योति फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। अहो फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि देकर नजर से निहाल कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह दिव्य ज्योति धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति शांति है। ओह मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम, मेरे साध्य प्यारे शिव बाबा, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा साधक शिव बाबा साध्य पर पूरी एकाग्रता के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहा हूं, देखता ही जा रहा हूं। सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। उनके सानिध्य का भरपूर आनंद लेकर, शक्तियों से संपन्न होकर, पुनः निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर, वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर, सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। और मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मी इंद्रियों पर शासन कर रहा हूं, और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति भी कर रहा हूं। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व है केवल एक चमकते हुए सितारे के रूप में। ओम शांति शांति शांति।